कुछ दो एक दिन पहले महाशिवरात्रि का बहुत ही शुभ महोत्सव हमने मनाया, तो हमने सोचा कि आज के इस रविवार के कार्यक्रम में हम भगवान श्री शिव जी, इनके विषय में कुछ चर्चा करें। करनी चाहिए। क्यों विशेष रूप से हमें जो ये महानुभाव हैं, जिनको महादेव भी कहा गया है, क्यों हम जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, क्यों हम इनकी कृपा याचना चाहते हैं? इसका एकमात्र कारण श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हम जो वैष्णव बनने की चेष्टा कर रहे हैं, हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव कौन है? जो विष्णु के भक्त हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार सभी वैष्णवों में सर्वोच्च वैष्णव हैं श्री शंभु। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव जी वो सभी वैष्णवों में सर्वोच्च हैं। और क्योंकि वो सर्वोच्च हैं सभी वैष्णवों में, इसीलिए उनकी कृपा बहुत आवश्यक है प्राप्त करने, यदि हमें भी भगवान श्री विष्णु का भक्त होना है। तो ऐसे तो श्रीमद् भागवत में शिवजी के विषय में अलग अलग स्कंदों में वर्णन आता है उसका, परंतु हमने सोचा कि शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख प्रसंग से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिवजी के ऐसे गुणों का बखान किया गया है जो बहुत ही विशेष हैं। और ये प्रसंग है आठवें स्कंद से, समुद्र मंथन की लीला। आप लोगों ने समुद्र मंथन की लीला के विषय में सुना होगा कि एक समय देवता और दानव ये दोनों एकजुट होकर निर्णय इन्होंने किया कि हम इतने वर्षों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, तो हमें एकजुट होकर कोई ऐसा भी काम करना चाहिए जो दोनों की हित में हो। तो दोनों ने निर्णय किया कि हमें अमृत प्राप्त करना चाहिए। और अमृत किस लिए प्राप्त करना चाहिए? ताकि हम अमर हो जाएं, अमृत। हालांकि भगवान ने गीता में पहले ही कह दिया है कि सारे देवता तो दूर की बात है, ब्रह्मा जी भी, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सारे जो लोक हैं और सारे जो लोग हैं उनके अंदर सभी वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। परंतु फिर भी देवता जो हैं वो कई बार चाहते हैं, चेष्टा करते हैं कि अमृत प्राप्त करें ताकि आयु बहुत लंबी हो जाए, इतनी लंबी कि कोई कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पाए हमारी आयु। इस भौतिक संसार में भी लोग अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे एक कलकत्ता के व्यापारी का, कि जो मरण अवस्था में थे और डॉक्टरों से वो याचना कर रहे थे कि केवल चार साल मेरे जीवन के बढ़ा दो, मेरा जो व्यापार है, परिवार है, इनको मैं ठीक से संभाल लूं। तो डॉक्टरों ने कहा 4 साल 4 दिन 4 घंटे 4 मिनट भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर यह स्वाभाविक एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि हम लंबी आयु जिए, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है जो सच्चिदानंद है। तो देवता और दानव, उन्होंने ये इच्छा की, परंतु हम देखते हैं दोनों में गुण क्या है कि इच्छा तो वो करते हैं, परंतु इच्छा पूरी करने के लिए वो शरण ग्रहण करते हैं भगवान श्री विष्णु की। क्योंकि हम चाहे कितनी भी इच्छा क्यों ना करें, किसी के लिए भी, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थिति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जब तक भगवान श्री विष्णु वहां से एनओसी नहीं मिलता, जब तक वहां से हमें सैंक्शन नहीं मिलता, तब तक हमारी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी, कि यदि किसी के अंदर भौतिक इच्छा भी क्यों ना हो, भगवान के पास जाना चाहिए उसके लिए भी। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छा भी है तो यदि उसे सफल करना चाहता है, जैसे ध्रुव महाराज चाहते थे कि मुझे ऐसा राज्य मिले जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो, एक भौतिक इच्छा थी। तो उनकी माता ने कहा कि भगवान विष्णु के पास जाओ, वो पूरी कर सकते हैं ये इच्छा। तो वो गए भगवान विष्णु के पास, और उनकी भक्ति तो इतनी तीव्र थी, इस श्लोक में कहा गया है तीव्रे न भक्ति योगे न, कि चाहे सर्व काम हो या अकाम हो या मोक्ष काम, चाहे कोई भी श्रेणी में व्यक्ति हो, परंतु यदि तीव्रता से भक्ति करता है तो भगवान स्वयं दर्शन दिए ध्रुव महाराज को। और जब भगवान ने स्वयं दर्शन दिया तो ध्रुव महाराज जान गए कि मैं केवल कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मिल जाए इस इच्छा को लेकर, परंतु यहां पर मेरे सामने बहुमूल्य हीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्ति मिलने का अवसर मिला है मुझे। तो कई बार हालांकि देवता जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सरकार में हैं, वो भगवान के सरकारी नौकर हैं वो, परंतु कई बार सरकारी नौकर भी रिश्वत ले लेते हैं, कई बार लेते हैं, हर बार लेते हैं। तो देवता भी वो कई बार वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ी हमारी भी इंद्रिय भोग होनी चाहिए हमारे लिए भी, तो इसलिए वो अमृत चाहते थे। तो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें फिर आदेश दिया कि यदि अमृत प्राप्त करना है तो जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देखिए, कई बार लोगों को यह प्रश्न उठता है कि क्या आपके शास्त्रों में क्षीर का सागर, क्षीर जानते हैं, दूध, दूध का सागर, यह भी कोई बात हुई, दूध का सागर। एक बार मैं इस कथा के विषय में कह रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा, क्षीर सागर ये आपने कहा आपकी कथा में, दूध का सागर कहां पर है, ये दूध का सागर? तो हमने बताया भाई शास्त्रों में वर्णन है इसका, दूध का सागर है। तो वो प्रश्न पूछता है, यदि वो दूध फट गया तो? इतना बड़ा दूध का सागर यदि फट जाए तो मैंने कहा फिर पनीर की सब्जी बनाते हो। तब वो पूछता है कि अच्छा यदि वो पूरा दूध का दही जम गया तो सारे जो अंदर जलचर हैं उनका क्या होगा। परंतु वो दूध कोई साधारण इस भौतिक संसार का दूध नहीं है जो फट जाए, वो दिव्य है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब इस दूध का मंथन करोगे तो दूध के मंथन करने से कुछ नहीं निकलता, खाली मिल्क शेक बनता है। इस भौतिक संसार का जो दूध है उसका यदि मिक्सर में मंथन करो तो कोई अमृत नहीं निकलने वाला वहां से। परंतु यहां पर भगवान ने कहा कि ये जो क्षीर सागर है इसका मंथन यदि करोगे तो अमृत प्राप्त होगा। तब फिर बहुत आतुर हो गए कि हां भाई भगवान ने सुझाव दे दिया है। परंतु अब प्रश्न यह था कि एक क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाए, कोई साधारण कार्य नहीं है। एक सागर का मंथन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। तो फिर से भगवान के पास भागे कि आपने तो कह दिया परंतु एक सागर का कैसे मंथन किया जाए। तब फिर भगवान ने आगे सुझाव दिया कि मंथन करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। एक मथनी होनी चाहिए, क्या कहते हैं मराठी में उसे, रवि, एक रवि होनी चाहिए और एक रस्सी होनी चाहिए। उस रवि और रस्सी के द्वारा मंथन किया जाता है। तो भगवान ने सुझाव दिया कि मंथन करने के लिए जो रवि होनी चाहिए वो एक पर्वत होगा, यहां पर मंदराचल पर्वत, और जो रस्सी है वो है वसु की सर्प। जय श्री राधा गोपीनाथ की जय। और इस पर्वत और इस वसु की सर्प के सहायता से मंथन संभव होगा। तो सबसे पहले वो गए, अब मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के मध्य में लाकर रखना है मंथन करने के लिए। तो ये जो देवी देवता हैं और जो दानव हैं, बहुत शक्ति है इनके अंदर, ये पर्वत वगैरह उठा सकते हैं आसानी से। तो इन्होंने प्रयास किया मंदराचल पर्वत को उठाने का, परंतु सब नीचे दब गए। थोड़ा उठाया मंदराचल पर्वत, परंतु फिर समझ में आया कि यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, और फिर न तो पूरा ऊपर उठा पाए न उसे नीचे रख पाए, तो दब गए नीचे। तो फिर से भगवान के प्रति प्रार्थना की और भगवान आ गए, और भगवान तो प्रसिद्ध हैं पर्वत उठाने के लिए। तो तुरंत फिर से भगवान ने सहायता की और पर्वत भी उठाया और पर्वत को ले गए समुद्र के मध्य में, और वहां पर दोनों देवता और दानव, उनको कहा, भगवान जानते थे कि जो दानव हैं वो अमृत किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो अमर बन जाए अपने राक्षसी कार्यों को करने के लिए, और देवता अमृत चाहते हैं ताकि वो मेरी सेवा करते रहें। तो भगवान अंदरूनी रूप से चाहते थे कि देवताओं को मिले अमृत। तो भगवान ने कहा ठीक है, सारे देवता वसुकी के मुख की तरफ चलो और सारे दानव वसुकी की पूंछ की तरफ। तो दानव समझ गए, भगवान पहले से समझ गए थे कि ये दानव मूर्ख हैं और ये विरोध करेंगे इसका। तो दानवों ने विरोध किया, हमें पूंछ क्यों, हमें पिछवाड़े में क्यों भेजा है, देवताओं को मुख दिया है हमें पूछ। तो भगवान समझ गए, तो भगवान ने देवताओं को कहा ठीक है इनको दे दो, कुछ समय बाद समझ में आएगा इन्हें, क्योंकि आगे चलकर जब मंथन शुरू हुआ तो वसुकी के मुख से सारा विष बाहर निकलने लगा, केवल जो सांसें थी वसुकी की वो इतनी गर्म थी और इतनी जहरीली थी कि सारे दानव फिर समझ गए कि ये देवता और विष्णु जो हैं वो बुद्धिमान हैं। परंतु अब वहां पर स्थान ले लिया था, तो फिर मंथन जब शुरू हुआ तो मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत सरक कर नीचे चला गया सागर में। अब ये सरक कर, रवि सरक कर नीचे चली गई, तो क्या करें इसका, फिर से भगवान के पास भागे। तो भगवान ने फिर श्री कूर्मदेव का रूप लिया और फिर वो पर्वत को अपनी पीठ पर ऊपर उठाकर रखा। और देखिए भगवान कूर्म के रूप में इतने विशाल थे कि इतना विशाल पर्वत वो भगवान के पीठ पर रगड़ा जा रहा था। एक तो कितना बड़ा वो रूप होगा भगवान का कि एक पर्वत को अपने पीठ पर रखा है, कोई कंकर नहीं था वो, बहुत बड़ा पर्वत था वो। और जब रगड़ा जा रहा था भगवान के पीठ के ऊपर तो भगवान को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई पीछे से खुजली कर रहा है। तो आजकल जो अपने आप को भगवान कहते हैं उनके ऊपर ऐसे कुछ पत्थर रगड़े जाने चाहिए। पर्वत यदि रगड़ दे तो फिर तो श्री भगवान जी का तिरोभाव हो जाएगा। तो कुछ पत्थर लाकर रगड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि खुजली लगती है कि क्या लगती है उनको। परंतु कूर्मदेव भगवान को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई खुजली कर रहा हो। और जब व्यक्ति को खुजली किया जाए, खुजलाया जाए तो अच्छा लगता है हा? तो भगवान जब इसे महसूस कर रहे थे तो भगवान को नींद आ गई, कूर्मदेव को नींद आ गई। और जब कूर्मदेव को नींद आ गई तो नींद में सांसें थोड़ी हम जोर जोर से लेते हैं, तो जो कूर्मदेव की सांसें हैं उसके वजह से समुद्र में लहरें उत्पन्न हुई और कहा गया है कि वो जो लहरें उस समय कूर्मदेव के सांसों के द्वारा उत्पन्न हुई थी आज तक समुद्र में देखी जाती है। तो जो समुद्र में जो लहरें दिखती हैं वो तब से चली आ रही। देखिए ये है भगवान की शक्ति कि भगवान सांस लेते हैं तो लहरें उत्पन्न करते हैं समुद्र में। तो यहां पर जब मंथन प्रारंभ हुआ अब तो सबसे पहले मंथन का परिणाम क्या हुआ, हलाहल विष बाहर निकला। और आचार्य इसकी तुलना करते हैं हमारी साधना भक्ति से कि हमारी साधना भक्ति भी इस समुद्र मंथन के समान है। हमारे हृदय की तुलना उस क्षीर सागर से की गई है। और जैसे कि भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं भगवद गीता के, दैव असुरी संपद, तो जैसे इस मंथन में भी एक तरफ देवता थे एक तरफ असुर थे, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी दोनों हैं, देवता भी हैं और असुर भी हैं। कई बार हमको लगता है भ्रम के वशीभूत होकर कि असुर तो मैंने देखा नहीं कहीं पर अंदर, हाँ देवता अवश्य बहुत से हैं अंदर। तो कई बार जब हम माया के वशीभूत रहते हैं तो दिखता नहीं कि असुर भी अंदर हैं, और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों। इसलिए जब भक्ति प्रारंभ करते हैं, जब जप शुरू करते हैं, तो कई बार भक्त आकर ये प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी भक्ति के पहले जीवन बहुत शांति प्रिय था, कि मैं कहीं पर भी जा सकता था, कुछ भी देख सकता था, कुछ भी खा सकता था, किसी से भी मिल सकता था, परंतु अभी ये जो आपके चार नियम हैं, ये चार नियम ने बहुत अशांति पैदा कर दी है, इतनी अशांति कि अब यदि मैं कहीं पर जाऊं, कुछ देखूं, कुछ खाने की इच्छा करूं, कुछ भी करूं, तो प्रश्न आता है चार नियम के अंदर आ रहा है कि नहीं। और यदि मैं किसी भक्त को बताऊं कि आज मैं वहां पर गया, तो भक्त सबसे पहले पूछते हैं कि वहां पर चार नियम का पालन हुआ कि नहीं, कुछ खाया तो पूछा कांदा लहसुन था कि नहीं उसके अंदर। तो अभी, और ये सब तो बहुत साधारण सी चीजें हैं, कुछ समय जप करने का हो जाता है तो उसके पश्चात ये सारे प्रश्न उठते हैं कि पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर काम वासना, क्रोध, अहंकार, ये सारी चीजें हैं, अब ये सारी चीजें ऐसे उठकर दिखती हैं मेरे जीवन में। जैसे एक भक्त मुझे बता रहा था कि पहले मैं खाने के विषय में कुछ सोचता नहीं था, अब प्रसाद का जब चर्चा होती है तो मैं पागल जैसे हो जाता हूं। प्रसाद कहां है, अगल बगल किधर प्रसाद, प्रसाद के विषय में किसी कुछ कहा? तो ये सारे जो अनर्थ हैं, जैसे एक व्यक्ति जो बीमार होता है और अलग अलग प्रकार के इलाज होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, वैसे कहा गया है कि चाहे कोई भी बीमारी हो एक ही पथी है और वो है वैकुंठ पथी, जो हमारे सारे बीमारियों एकमात्र इलाज है। तो जब भी कोई व्यक्ति नेचुरोपैथी का इलाज लेता है तो उसमें यदि वो एक नेचुरोपैथ के पास जाए अपनी बीमारी को लेकर, तो जब वो दवाई देता है तो दवाई देने के कुछ समय पश्चात ये देखने को मिलता है कि जो बीमारी के लक्षण थे और अग्रसर हो गए और बढ़ गए। तो आकर डॉक्टर को बोलता है, क्या दवाई आपने दी कि मेरी बीमारी के लक्षण और बढ़ के दिखते हैं? तो नेचुरोपैथ क्या कहता है, हाँ दवाई काम कर रही, और लो उस दवाई को, क्योंकि ये लक्षण है उस इलाज का कि सबसे पहले वो बीमारी को बाहर निकालता है, बीमारी के जो लक्षण है उसको बाहर निकालता है। तो उसी प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करना शुरू करते हैं, साधना भक्ति शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये हरे कृष्ण महामंत्र हम ही को अपने हृदय के अंदर ले जाता है और दिखाता है, देखो ये सारे जो राक्षस बैठे हैं ये सबको पाला पोसा है आपने। और तब समझ में आता है कि ये सारे अनर्थ, ये राक्षसी अनर्थ, ये मेरे ही पाले हुए हैं, मेरे ही हृदय में है। तो ये उस विष के समान है। हालांकि समुद्र मंथन की लीला में वर्णन है कि आगे चलकर अमृत आया, परंतु सबसे पहले विष बाहर आया। तो ये सारे जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे बाहर आते हैं जब हम भक्ति करते हैं। तो देवी देवता, देवता और असुर, ये जब इन्होंने देखा कि ये हम अमृत की खोज में हैं और यहां पर ये विष बाहर आ रहा है, तो ये विष का क्या करें अब? तो तुरंत भगवान के पास फिर से भागते हैं, ये विष बाहर आ रहा है, इसका कुछ कीजिए। तो भगवान फिर कहते हैं उनसे, हालांकि भगवान पूर्ण सक्षम हैं हर प्रकार के विष को संभालने के लिए, परंतु भगवान ने इन दोनों को कहा कि एक व्यक्ति है जो इस विष को पी सकते हैं और वो हैं भगवान श्री शिव। तो शिव जी के पास जाओ और वो तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। और भागवत में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी का नाम क्यों लिया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मेरे जो परम वैष्णव हैं उनका गुणगान हो। तो तुरंत सारे देव और असुर वो शिवजी के पास जाते हैं और इस आठवें स्कंद के सातवें अध्याय में वर्णन है कि सबसे पहले जाकर वो गुणगान करते हैं शिवजी का कि आप महादेव हैं, देवा आदि देव हैं, आप ये हैं वो हैं। और फिर गुणगान करने के बाद वो शिवजी से कहते हैं कि आपके लिए हम एक ऑफरिंग लाए हैं। और काय की ऑफरिंग लाए हैं? विष की। विष पीना चाहेंगे? तो देखिए, आप कोई ऐसे महादेव से मिलने जा रहे हो और उनके लिए आप ये ऑफरिंग लेके जाओ, विष की ऑफरिंग, तो कैसा लगेगा? तो भगवान शिवजी हालांकि जानते थे, तो भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिवजी प्रसन्न इसलिए हुए कि मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं किसी की सहायता कर पा रहा हूं, और ऐसी सेवा कि जो सेवा बहुत सबसे ज्यादा कठिन जो सेवा होती है वो भगवान श्री कृष्ण शिवजी को देते हैं करने के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि शिवजी में ही पूर्ण क्षमता है सबसे कठिन से कठिन सेवा करने की। देखिए, इस भौतिक संसार में हम भक्ति प्रारंभ तो करते हैं, परंतु भक्ति में भी हम चयन करते हैं कि कौन सी सेवा, कौन सी भक्ति का अंग वो मेरे लिए अनुकूल है और आसानी से मैं उसे कर सकता हूं। कई बार प्रवचनों में हम जोर जोर से कहते हैं हरेर नाम एव केवलम, इतना आसान बना दिया है, बैठे बैठे केवल सुनना है, मुंह से उच्चारण करना है, क्योंकि भगवान हमारी स्थिति जानते हैं। यदि भगवान ने युग धर्म दूसरा दे दिया होता, गलती से कह दिया होता कि कलयुग का युग धर्म है तपस्या, तब तो फिर भगवान आप और आपका युग धर्म आप अपने पास रखो और हम और हमारा युग हम एक साथ रहते हैं। तो सेवा में भी जो बहुत आसान वाली सेवा है, कई बार हम इस प्रकार की सेवा लेना चाहते हैं कि जिसमें हमारा भी थोड़ा बहुत कुछ इंद्रिय भोग होता रहना चाहिए उस सेवा में। तो इसलिए कई बार भक्त कहते हैं, पूछा जाए कि आप कौन सी सेवा भगवान की करते हैं, हम प्रसाद की सेवा करते हैं, रोज प्रसाद की सेवा में लगते हैं। और प्रसाद की सेवा कैसे करते हैं? ग्रहण कर कर, वो भी प्रसाद सेवा है। परंतु यहां पर देखिए, शिवजी वो अब विष पीने जाने वाले हैं, और कोई साधारण ये विष नहीं था, ये दुर्जर विष था। और ये कितना था? पूर्ण समुद्र वो जितना बड़ा था और जितनी मात्रा क्षीर की थी उसके अंदर, दूध की, उतनी ही मात्रा में वो विष बाहर निकला था। ये देखिए, यहां पर एक चित्र है कि ये समुद्र से ये जो विष निकल रहा है, शिव जी ने अपने हथेली में उसको कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे रसना का कॉन्सेंट्रेट होता है हम पीते, परंतु शिव जी ने पूरे विष का कॉन्सेंट्रेट। और यहां पर वर्णन है कि जब ये देव और असुर आए और उन्होंने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि कृपया आप इस वृक्ष विष को ग्रहण कीजिए, तो भगवान शिव जी भी सबसे पहले पार्वती से पूछते हैं, परमिशन है? तो शिव जी को भी पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है भाई, वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। हालांकि एक कथा ऐसी है कि एक बार पार्वती देवी वो शिवजी के पास आई और उन्होंने शिवजी को कहा कि देखो आप महादेव हैं, एक गुण अवतार हैं और इतनी आपकी आराधना होती है, इतना बड़ा पद है आपका, और आपका परिवार भी देखिए, अच्छा खासा परिवार है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, नंदी है, चूहा है। इसलिए कहा गया है कि जो शिव परिवार है वो एक आइडियल है, यदि किसी को अपना परिवार ठीक से चलाना है तो शिव परिवार का उदाहरण लेना चाहिए। क्योंकि शिव परिवार में क्या देखते हैं आप, शिव जी का वाहन कौन है? नंदी बैल, वो शिव जी के वाहन है। और दुर्गा देवी जो कि उनकी अर्धांगिनी है, उनके वाहन कौन है? एक शेर। गणेश जी उनके पुत्र हैं, उनके वाहन कौन है? एक चूहा। कार्तिकेय के वाहन कौन है? एक मोर। और यदि देखो जंगल में ये सारे जो प्राणी, शेर जो है वो बैल को मारकर खाता है, एक जो मोर है वो किसे खाता है? सर्प को। और शिवजी के शरीर पे चारों तरफ सर्प ही सर्प हैं। तो जो मोर है वो साधारणतः सर्प को खाता है, मोर का खाना है सर्प, और सर्प का खाना क्या है? चूहा। तो यहां पर देखिए सब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, यदि जंगल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। परंतु सभी शिव परिवार में कोई झगड़ा किसी में नहीं होता, कभी कभी कोई नहीं कहता कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा, एग्रीमेंट साइन करो। तो पार्वती, उन्होंने शिवजी को कहा कि देखिए आपका इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा पद है आपका, तो एक घर होना चाहिए हमारा, एक घर तो होना चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि भाई पूरा कैलाश पर्वत है। तो माता पार्वती कहती है पर्वत पे कोई रहा जाता है? तो एक घर होना चाहिए हमारा। तो शिवजी भी फिर मानना पड़ता है, तो शिवजी मान गए, ठीक है एक घर निर्माण करते हैं। तो अब शिवजी का घर निर्माण हो रहा है तो ये समाचार पूरे विश्व में फैल गया, अब अंततः शिवजी का भी घर बन रहा है। तो सारे उत्साहित हो गए, सब जगह पर SMS भेजा गया कि भगवान शिवजी और उनके परिवार के लिए घर बन रहा है। तो सभी इतने आतुर थे कि कब ये घर पूरा होगा और कब हम गृह प्रवेश के समारोह में जाएंगे। और गृह प्रवेश के समारोह के लिए पूरे विश्व को आमंत्रण दिया गया था, सारे देवता, सारे असुर, यहां तक कि भूत पिशाच, शिवजी उनकी भी देखभाल करते हैं, वो सब, सारे ऋषिगण, उनके सारे परिवार, सभी गृह प्रवेश के समारोह में आए। और गृह प्रवेश के समारोह में पार्वती देवी वो सबको भेंट दे रही थी, जो भी आ रहे थे समारोह में सबको भेंट दिए जा रहे थे। तो पूरे दिन भर समारोह चला और सभी ने दर्शन किया शिव महल का, शिव निकेतन, और अंत में जब सब अपनी अपनी भेंट लेकर चले गए तो एक ऋषि बाकी रह गए। और सभी जाने के बाद वो शिवजी के पास आते हैं कि आपने मुझे तो एक भी भेंट नहीं दी। तो शिवजी पार्वती को पूछते हैं, भाई ये एक रह गए, इनको भेंट नहीं दी। तो पार्वती घर में जाकर देखती हैं तो कोई भेंट अब बची नहीं, सब भेंट बट चुकी थी। तो कहते हैं कि सॉरी, कोई भेंट नहीं बची यहां पर। तो शिवजी फिर अंदर गए ढूंढने के लिए कहीं पर कोई भेंट है क्या देने के लिए। तो ऋषि मुनि कहे, क्या खाली हाथ भेजोगे? तो शिवजी ने कहा, नहीं, एक भेंट है बाकी, वो है घर। ये घर है, वो बाकी है, ये ले लो। तो पार्वती को कहा और सबको कहा, बाहर आ जाओ। और सबको बाहर बुलाया और उनको कहा, घर की चाबी दे दी, ये लो, घर आपका। और फिर से शिव परिवार कैलाश पर्वत पर। तो शिवजी इस प्रकार से विरक्त हैं, निरासक्त हैं वो। तो शिवजी ने आज्ञा ली उमा देवी पार्वती से कि आज्ञा है, ये ऑफरिंग मैं लूं। तो तुरंत पार्वती देवी वो कहती हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, आपको हम क्या आज्ञा दे सकते। तब फिर भगवान शिवजी ने वो पूरा जो विष है अपनी हथेली पर लिया और पूरे विष को वो पीना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने वो विष को पीना शुरू किया तो उनका जो गला है वहां पर उसे उन्होंने रोक कर रखा और उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। इसलिए उनका एक नाम क्या है? नीलकंठ महादेव। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत् चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, कि भगवान शिवजी ने अपना जो गला नीला कर दिया, भगवान शिवजी उसको एक आभूषण मान रहे थे। ऐसा नहीं कि अरे भाई ये तो काला हो गया, नीला हो गया, अब किसी ब्यूटी पार्लर में जाके इसे ठीक करना चाहिए। जैसे लोग गले को सुंदर करने के लिए क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या कहते हैं उसे, नौ लखा हार, कि हार जो 9 लाख रुपए का होता है कई बार, ऐसा हार पहनते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद जी को पूछा गया कि ये आप क्या पहनते हैं ये गले में, तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये कुत्ते का पट्टा है। जैसे कुत्ते को भी पहनाया जाता है गले में एक पट्टा, प्रभुपाद जी ने कहा हम भगवान कृष्ण के कुत्ते हैं। तो इसीलिए यदि हमें भगवान श्री कृष्ण का कुत्ता बनना है तो ये पट्टा है, पट्टा तो पहनना पड़ेगा, या तो ये या तो और कुछ, मतलब कुत्ता बनना पड़ेगा। अब हमें केवल चुनाव करना है किसका, भगवान श्री कृष्ण का कुत्ता कि माया का कुत्ता। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि भगवान श्री कृष्ण के कुत्ते हम बन जाएं तो ये पट्टा देखकर कोई हमें पकड़ेगा नहीं, यमराज या यमदूत कोई निकट नहीं आएंगे। जैसे जब गले कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो लोग कहते हैं हाँ किसी का पालतू कुत्ता है, हाथ मत लगाना। तो शिव जी इसे आभूषण मान रहे थे, उनका जो कंठ नीला हो गया उसे वो आभूषण मान रहे थे। और आगे ये कथा तो लंबी है, आगे चलकर अब विष तो हो गया, शिव जी ने संभाल लिया, तो सारे देवता और असुर फिर से भागे, मंथन शुरू किया और अन्य बहुत से उस मंथन से पदार्थ बाहर निकले और अंततः अमृत, अमृत बाहर आया। तो जैसे ही अमृत बाहर आया तो जो दानव थे राक्षस, उनकी प्रवृत्ति जो है तुरंत झपट कर ले लिया उसे, और भगवान जानते थे कि ये ऐसा कार्य करेंगे। तब फिर देवता फिर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया अब फिर से वो अमृत चला गया। तो भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया कि पूरा विश्व जो है वो भौचक्का रह गया इस अवतार को देखकर भगवान के। और भगवान ने अवतार लिया मोहिनी मूर्ति का, और जो मोहिनी मूर्ति का अवतार भगवान का ऐसा विशेष था कि जब भगवान एक सुंदरी के रूप में अवतरित होते हैं तो कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता। तो भगवान स्वयं एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में अवतरित हुए और ये खबर पूरे विश्व में फैल गई कि भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया है कि कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर मोहिनी मूर्ति के रूप में उन्होंने अमृत जो है दानवों से लिया, क्योंकि सारे जो राक्षस थे वो तो भौचक्का रह गए मोहिनी मूर्ति को अब देखते हुए। तो बस एकटक होकर मोहिनी मूर्ति को देख रहे थे और मोहिनी मूर्ति से अमृत उनके हाथ से ले लिया और देवताओं को दे दिया। तब जाकर पता लगा कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये कौन है और क्या किया और अमृत कहाँ गया सब। यहां तक कि जो राक्षस थे ये इतने ज्यादा वो मग्न हो गए मोहिनी मूर्ति का रूप देखने में कि वो आकर कहते हैं, कोई राक्षस आकर कहता है कि क्या चाहिए, मुझसे थोड़ा बात करो। तो एक अमृत लेकर आ गया, पूरा अमृत का घड़ा, ये अमृत ले लो पूरा। तो ये सब भगवान अपने दिव्य रूप को दिखा रहे थे। तो भगवान शिव जी इसके बारे में सुने, तो अब पूरी लीला हो गई, अब भगवान फिर से अपने निज रूप में आ गए। तो शिव जी ने सोचा कि सभी ने